ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इति भीतः प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विविधया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देव ब्रतु पतत्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, कहिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन्न होकर शरीरसज्जा पर लेटे हुए थे। तात्पर्य, इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्म देव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वो इच्छानुसार देहत्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसज्जा पर लेटे हुए थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। आए हुए सभी श्रोता वर्ग का हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वृंदावन की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। आज एक पावन दिन है जो वैष्णव कैलेंडर में स्थान लिया है और ये दिन है भीष्माष्टमी। भारत के जन जन, केवल भारत के नहीं, वर्तमान समय विश्व की जनता प्राय भीष्मदेव से परिचित है। सभी जानते हैं भारतवर्ष में एक महान व्यक्तित्व आया था और जैसा कर्म किया प्राय इतिहास में बिरले ही कोई कर पाते हैं, वह है भीष्मदेव। भीष्माष्टमी भीष्मदेव के आविर्भाव को प्रकट करने वाली तिथि है। कई लोगों का मत है कि आज भीष्मदेव का महाप्रयाण था, पर हिसाब से आगे देखेंगे सटीक बैठता है नहीं बैठता है। चाहे प्रयाण हो, चाहे महाप्रयाण हो अथवा आविर्भाव हो, पर ऐसा योद्धा, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्ति विश्व इतिहास में बहुत गिने चुने ही आते हैं और भीष्मदेव जैसे व्यक्ति ये तो कहना ही क्या है। उनके व्यक्तित्व में कई बातें ऐसे आते हैं जिन्होंने ना तो कभी किया था ना और कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। श्री भीष्मदेव चंद्रवंशी राजा शंतनु के पुत्र थे। चंद्रवंश कई राजाओं को लेकर के सुशोभित हुआ था। उनमें एक राजा आए जिनका नाम था हस्तिनी। उन्होंने हस्तिनापुर को बिठाया था। हस्तिनापुर राजधानी भारत का तत्कालीन राजधानी था। उसी परंपरा में कई राजा आए। महाराज कुरु भी आए थे जिनके नामानुसार कुरु वंश चल पड़ा। उसी वंश में महाराज दुष्यंत आए थे, उनके पुत्र महाराज भरत बने जिनके नामानुसार भरत वंश पड़ा। और लंबे समय के बाद उसी वंश में महाराज संतनु आए। महाभारत में इस कथा का उल्लेख हुआ है। ऐसा भी कहा गया है संतनु इसीलिए उनको कहा जाता था कि सम तनुति इति संतनु, जो किसी वृद्ध व्यक्ति पर अपना कर स्पर्श कर देते थे तो वो व्यक्ति युवा हो जाता था, अर्थात उनकी क्लांति, उनकी श्रांति, उनकी पीड़ा ये सब नष्ट हो जाती थी। इसलिए उनके पिताजी का नाम था संतनु। संतनु बड़े भद्र थे, बहुत बहुत उदार एवं भद्र व्यक्ति थे। इस प्रमाण से, इस दृष्टांत से आप विचार कर सकते हैं, विवाह करना चाहते थे एक धीवर कन्या से, केवट की पुत्री से। कई ऐसे भारतवर्ष में राजा हुए हैं इतिहास में, सबने प्रजाओं को उत्पीड़ित किया था, बहुत सारे राजे, किसने उनके पुत्रियों का, हाँ, स्त्रियों का भी अपहरण करने में हिचकिचाहट नहीं करते थे। ऐसा देखा भी गया है भारत इतिहास में, आप लोग देख सकते हैं। परंतु भीष्मदेव के पिताजी संतनु एक ऐसे राजा थे, ये सब दृष्टांत से ये सब विचार हैं, केवल कहानी पढ़ लेना नहीं चाहिए। आप विचार करिए, संतनु जाकर उस धीवर से अनुरोध करते हैं, आप कृपा करके अपनी कन्या को मुझे समर्पित करो। राजा थे, क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी राजा, क्या उनको इतनी विनम्रता से बात करनी थी? क्या है, उस लड़की हमें चाहिए, जाओ ले आओ, ये भी एक विचार होता है। पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। गांधर्व रीति में जो विवाह किया जाता है, क्षत्रियों में ज्यादा तरह से ये प्रथा प्रचलित है, अपहरण करना, अंग्रेजी में कहते हैं किडनैपिंग, उठाया ले चला और जोर जबरदस्त विवाह किया। ऐसा भी देखा जाएगा, अभी भीष्मदेव के जीवन इतिहास में ऐसी घटनाएं भी उपलब्ध होती है। पर महाराज संतनु उस धीवर से निवेदन करते हैं, क्या आप अपनी पुत्री को हमसे विवाह करा सकते हैं, दे सकते हैं? पर वो धीवर भी ऐसा ही था, उन्होंने कहा हम तो दे सकते हैं पर एक शर्त में। क्या शर्त है? न यदि हमारा पुत्र आगे राजा बनेगा तब हम आपको मेरी पुत्री को समर्पित कर सकते हैं। ये केवट ने, वो धीवर ने ये शर्त रख दी। ये कथा को यहीं रखते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। इसने शर्त रख दी। अब देखिए, पिता जैसा है पुत्र उससे कई गुना श्रेष्ठ है। संतनु की जो पत्नी थी, प्रथम पत्नी, वो थी गंगा जी। एक बार संतनु जी गंगा के तट पर विहार करते थे और उनके समक्ष में आई पतित पावनी, परम सौंदर्यशालिनी श्री गंगा जी। गंगा जी की रूप माधुरिमा में श्री संतनु मोहित होते हैं और उनसे प्रणय की मांग करते हैं। तो गंगा जी ने भी शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा हम आपसे विवाह करेंगे कुछ शर्त से। तो संतनु ने कहा, हे देवी, आप कृपा करके अपनी शर्त बतलाइए। श्री गंगा जी ने कहा, विवाह के उपरांत मैं जो भी करूंगी आप उसमें बाधा नहीं देंगे, मैं जो भी करूंगी आप उसमें बाधा नहीं देंगे। तो संतनु ने समझा, क्या है, स्त्री है, क्या करेगी, इसमें कोई हानि नहीं है। हो सकता है 10-20 साड़ी खरीद करेगी, कहीं कुछ खाएगी पिएगी जाएगी, सामान्य सामान्य बातें हैं, ठीक है, मंजूर है, दोनों का विवाह होता है। दोनों के विवाह में गंगा जी को गर्भ रहता है और जैसे ही पहली संतान होती है, पहला बालक उत्पन्न होता है, गंगा जी उस बालक को पकड़ते हुए गंगा की धारा में बहा देती है। पर सर्प रूपी रस्सी से बंधे हुए थे महाराज शांतनु, बोलने का कोई अधिकार नहीं था, चुपचाप निकल गए। ये कथा यहीं रहेगी, कथा के लिंक को ध्यान देना, केवट की कथा वहीं रही, ये कथा हम यहीं छोड़ते हैं और पीछे चलते हैं। गंगा जी ने क्यों ये शर्त रखी थी, वो देवी थी। एक कथा यदि ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो लिंक भूलेंगे, इसीलिए हम ये कथा को वहीं विराम देते हैं, ये कथा यहीं रहती है, फिर पीछे चलते हैं। अष्टवसु होते हैं देवताओं में, ये अष्टवसु बड़े धनवान माने जाते हैं। वसु माने धन, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है वसु नाम पावकस्यास्मि, ये अष्टवसुओं में ये एक वसु है। एक बार अष्टवसु अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते वे श्री परम तपस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं और श्री वशिष्ठ जी कामधेनु के आशीर्वाद से फले फूले रहते हैं। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में नंदिनी कामधेनु रहती है। अष्टवसु ने देखा कि इतनी सुंदर गाय है और ये सारी मनोकामना को पूरी भी कर देती है, तो स्त्रियों के मन में लोभ आ गया, जल्दी ये लुभाती है। तो उनमें से किसी एक स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनते हो, ये कामधेनु हमें चाहिए। तो सब स्त्रियों की बात पर आ गए और वशिष्ठ जी से लड़ने को तैयार हुए, है ना। उनमें से जो प्रधान वसु था उनका नाम था प्रभास, तो वो ज्यादा एकदम लड़ने को तैयार हुए, लड़े भी। तो ये सब देखकर उनको श्राप लग गया, चाहे नंदिनी से चाहे वशिष्ठ से, कि तुम लोग मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे और मृत्यु लोक में जाकर बहुत अधिक दिन जीवन नहीं जी सकते। उनमें से सातों को तो मैं श्राप देता हूं, ये तुरंत ही जन्मेंगे और मरेंगे, परंतु ये जो प्रभास है ये बहुत हमसे टक्कर लेता है, इनको हम लंबी जिंदगी का, मर्त्य लोक में बहुत लंबी आयु का हम श्राप देते हैं, तो लंबी आयु लेकर के ये जन्म रहे लेगा और रहेगा भी। तो उसी प्रकार से जब ये अष्टवसु शापित हुए थे तो उन सात वसुओं को और आठ वसुओं को मुक्ति दिलाने हेतु गंगा जी का विवाह होता है शंतनु से। तो गंगा जी ने इसलिए शर्त रखी थी, जो मैं करूंगी आप बाधा नहीं देंगे। तो एक एक करके उन्होंने सात पुत्रों को गंगा की धारा में बहा दिया। तो उससे क्या होगा, तो श्राप से मुक्त हो गए सात वसु, बाकी बचे एक प्रभास, उनको लंबी आयु का श्राप है। तो वो रहे जो पुत्र, प्रकृति का विधान है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो वैसा होता, लेकिन अपनी सोच हो तो नहीं प्रभु सोची तत्काल, अपनी इच्छा से कुछ होता नहीं है। कितना कितना व्यक्ति सोचता है और होता है क्या क्या नहीं होता। तो एक एक करके सारे पुत्रों को बहाने के बाद जब अष्टम पुत्र की बारी आई तो शंतनु से रहा नहीं गया। वास्तव में उसी श्रीहरी के प्रेरणा से ही सब होता है। तो गंगा जी उस पुत्र को लेके जा ही रही थी और संतनु पीछे उनको रोके, जैसे ही रोक दिया बस गंगा जी की शर्त थी, जिस दिन आप हमारे काम में बाधा डालोगे उस दिन हम चले जाएंगे। पुत्र वापिस दे दिया और गंगा जी चली गई। और वो पुत्र बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसका नाम रहा देवव्रत, भीष्म नहीं, देवव्रत। देवव्रत इसीलिए उनका नाम रहा क्योंकि जन्म के अनुसार, उनके नक्षत्र के अनुसार नामकरण होता है। आजकल फैशनेबल नामकरण ये उचित नहीं है, हम उसका कोई औचित्य स्वीकार नहीं करते हैं। जन्म के अनुसार राशि नक्षत्र के अनुसार नामकरण किया जाता है। देवव्रत माने देवानाम व्रत यस्य स देवव्रत, देवताओं का जो व्रत होता है उन व्रतों को जो निभाता है उसी का नाम है देवव्रत। अर्थात उनकी जन्म पत्री में उनके भविष्य में ये ब्राह्मणों ने जाना था कि आगे चल करके ये बहुत बड़े व्रती होंगे। देवानाम व्रत, देवानाम व्रत देवताओं का क्या व्रत है? देवता लोग सत्य कहते हैं, भीष्म जी ने जीवन भर सत्य कहा। देवता लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, भीष्म देव ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। देवता लोग दानी होते हैं, भीष्म देव ने जीवन भर दान पुण्य किया। क्या नहीं किया? सत्य, न्याय, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इससे परिपूर्ण थे भीष्म देव। इसीलिए उनका नाम पड़ा था जन्म संस्कार के अनुसार देवव्रत। तो वो देवव्रत को गंगा जी छोड़कर चली गई। शांतनु के गोद में देवव्रत बड़े होते हैं, पर विरह की जिंदगी चलती है शांतनु में। पिता का दुख दिखाने गया देवव्रत से। वही शांतनु जब धीवर, अब लिंक से आ जाइए, ऊपर आ जाइए, वही शांतनु जब धीवर से उस पुत्री के लिए मांग करते हैं, पुत्री का कर चाहते हैं, पानी चाहते हैं, तो उसी समय उस धीवर ने ये शर्त रख दी थी, आपके पास पुत्र है देवव्रत, आप उसको राजा बनाओगे तो मेरी पुत्री से विवाह करोगे, इसकी जो संतान होगी वो क्या करेगी? यदि वो राजा बनेगा तो हम कर सकते हैं। परंतु शंतनु न्यायपरायण राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, परोपकार उनके चित्त में था, क्या कर सकते थे, वो नीरव रहे। ये बात देवव्रत के कान में पड़ी। देवव्रत स्वयं उस स्थल पर आए जहां शंतनु नीरव दंडायमान थे, खड़े थे। पूछताछ की, क्या बात है? तो धीवर ने पूरी बात बता दी। अच्छा, ऐसी बात है, मेरे पिताश्री चाहते हैं तुम्हारी पुत्री के पानी और तुम देने में ऐसी शर्त रखते हो। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की अभिलाषा को पूरी कर लेना। भीष्मदेव तो वैसे कोई से पुत्र नहीं थे, हम जैसे होते तो दुनिया भर के दोष देखते, अरे बूढ़े हो गए हैं, सात सात संतान है फिर भी विवाह करना चाहता है। देखिए महाभारत में क्या शिक्षा है, हमारा शास्त्र, संस्कृति, हमारी प्रथाएं, ये हमें क्या सिखाते हैं। भीष्म देव पिता के लिए आज जो शपथ लेते हैं, बस वो देवव्रत नहीं लिया, और इतिहास में कहीं ऐसा नहीं है, कोई एक भी व्यक्तित्व नहीं है जो पिता के लिए एक त्याग किया है। किया था, पुरु ने भी किया था, उन्होंने भी जवानी दी थी उसको, यजाति को, पर उन्होंने तो आगे चल के विवाह भी किया था जिससे पुरुवंश चल पड़ा। पर भीष्म देव की प्रतिज्ञा ऐसी, ऐसी अनूठी प्रतिज्ञा थी, इतिहास में वो बिरली थी। भीष्म देव ने कहा ठीक है, यदि आपकी ये शर्त है तो मैं इस नदी का जल लेकर शपथ करता हूं तो मैं राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, अर्थात तुम्हारा पुत्र ही बनेगा, नहीं मैं दावा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, आप दावा नहीं करोगे। भीष्म ने एक एक शपथ ली, एक प्रतिज्ञा ली। पर धीवर भी बड़ा चतुर था, उसने कहा आप नहीं कर सकते हो, पर आपसे जो उत्तराधिकारी जन्म लेंगे, आप विवाह करोगे, आपके पुत्र पौत्र आदि होंगे, आप चंद्रवंशी राजा हो, युवराज हो, तो वे तो सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। भीष्म जी ने कहा यदि ऐसी बात है मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मेरे पिता मेरे कार्य में संतुष्ट रहेंगे तो मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। भीष्म भीष्म, ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की थी, तुमने ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा करी पिता की प्रसन्नता के लिए, तो तुम्हारा नाम आज से प्रसिद्ध होगा भीष्म। भीष्म माने भीषण प्रतिज्ञा करने वाला, और वो प्रतिज्ञा करते हुए हुए वन में नहीं गए। नहीं, हम लोग इतने सारे कानून बनाते हैं, वास्तव में हमारा मंदिर है ये पब्लिक टेम्पल है, जनसामान्य जनसाधारण के लिए मंदिर है, यहां पर स्त्रियां आएंगे, पुरुष भी आएंगे, बालिकाएं आएंगी, बहुत कुछ भिन्न भिन्न पोशाक परिपाटी लेकर के आएंगे, यहां पर जो ब्रह्मचर्य रक्षा करना चाहते कैसे रखेगा। इसलिए आश्रम हम दूसरा बना लेते हैं, उनके लिए कड़ा प्रावधान कर देते हैं, प्रबंध कर देते हैं, व्यवस्था करते हैं, पर ऐसे नहीं है। भीष्म देव उसी स्थल पर रहे जिस स्थल पर भारत की अनिंद्य सुंदरियां विराजमान करती थी, उस कुरु सभा में, उस कुरु राज दरबार में वो सभापतित्व आदि करते थे और उसकी देखभाल करते थे, उसकी रक्षा करने की शपथ ली थी। दो प्रतिज्ञा तो वहां कर ली, संसार में प्रकट हो गया भीष्म, भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा, संसार में सचमुच ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं किया होगा भीष्म देव के अतिरिक्त, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। और घर पर आए उस सत्यवती को लेकर, धीवर पुत्री का नाम था सत्यवती, शंतनु लेकर के आए, घर में विवाह हुआ, बहुत अच्छा रहा। लोगों ने तरह तरह की आलोचना करने लगे शंतनु की, आपने क्या किया, अपने सुख के लिए भीष्म जैसे योग्य, हर प्रकार से योग्य युवराज को भी हटा दिया। सब लोगों ने कड़ी कड़ी आलोचना करने लगे शंतनु की, पर शंतनु नीरव रहे। भीष्मदेव ने प्रतिवाद किया, नहीं, मेरे पिताजी का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मुझे युवराज पदवी से च्युत करने का, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने स्वेच्छा से कहा है, मैंने युवराज पदवी का प्रत्याख्यान कर दिया है, मैंने ब्रह्मचर्य धारण करने की शपथ ली है। तो पूर्ववासियों ने कहा ठीक है, आपने शपथ ली है, बहुत अच्छी बात है। और संतनों ने विवाह किया सत्यवती धीवर कन्या से, इसके पुत्र वीर क्षत्रिय बनेंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, आप जैसे योद्धा, आप जैसे सर्वगुण निष्पन्न व्यक्ति इनके गर्भ से पैदा होंगे और ये देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं, करेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। भीष्म ने तीसरी प्रतिज्ञा ली, उन्होंने कहा यदि ऐसी बातें हैं तो मेरे शरीर में एक बूंद जब तक रहेगा तब तक हम इस हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने पूर्ववासियों को ये वचन दे दिए। देखिए कितने वचनों से भीष्म देव घेरे हुए हैं, पिताजी की प्रसन्नता और पूर्ववासियों की प्रसन्नता, अपने जन में अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं लिया, इसीलिए तो उनको महामानव कहा गया है। अपने स्वार्थ के लिए जीने वालों की गिनती ही क्या है, हुई खाया पिया, वास्तव में कितना हीन जीवन यह है। अपन इस जिस जो पेट का दाना, जो पेट का अन्न सड़ जाता है दो घंटे में, उसी स्वार्थ के लिए दिन भर रचे पचे रहना, उनको बड़े व्यक्ति कोई नहीं कहता, सामान्य जनता भी नहीं कहते। भीष्मदेव के इतिहास में देखिए एक भी सुख नहीं है उनके जीवन में, कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए 12 महाजनों में उनका नामांकन होता है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्म बलीर बयासकी यमाह। 12 महाजनों में नौवीं भूमिका में नौवें स्थान पर भीष्म देव आते हैं। देवताओं के बीच में इनका नाम है स्वयंभू, नारद, शंभु, कहां शिव जी, कहां भीष्म, भीष्म जी उन्हीं की कोटि में बैठते हैं। हम लोग में प्रतियोगिता होती है, कुर्सियां यहां डली हैं, वहां डली है, उस कुर्सी में हम बैठेंगे, वो तो छोड़िएगा, प्रसाद हल में ब्रह्मचारी पंडाल, वहां नीचे का पंडाल लोग तांता लगाते हैं, ऊपर हम बैठेंगे। सम्मान पाने की इच्छा होती है, सबकी ऊंची इच्छा होती है, पर कार्य भी तो होना चाहिए। निष्कामता, सत्य, धर्म, न्याय, तब तो व्यक्ति ऊपर सीढ़ी पर चढ़ता है। अब भीष्म देव की सीढ़ी देखिएगा, स्वयंभू कहां स्वयंभू, नारद ब्रह्मा जी, नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्म, महामानव है, अति मानव है। महाभागवतों में ये आते हैं भीष्म, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा जीवन पिता के लिए, राज्य के लिए, सिंहासन के लिए उन्होंने त्याग दिया। ऐसा भीष्म है, जीवन भर केवल दूसरों के लिए त्याग किया, और जिनको नहीं चाहते उनके लिए भी। वास्तव में भीष्म देव की कतई इच्छा नहीं थी कि वो कौरवों के पक्ष में लड़े, लेकिन मजबूरी थी, वचन दिए थे। कभी कभी वचन देने के बाद घटनाएं प्रतिकूल हो जाती है। आप देखो अपने जीवन में, आज से शपथ करके देखिए, कोई काम करने के लिए आप कुछ वचन दीजिए, ठीक दूसरे दिन उसकी विपरीत बातें आएंगे और पूरे परिस्थिति बदल जाएगी, आपको सामना करना पड़ेगा। आप अच्छे बनने का प्रयास करिएगा, उसी दिन से तो लोग बड़ी बड़ी आलोचना करने लगेंगे, अच्छा बनना चाहते हैं पिंचिंग करना चाहेंगे, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। भीष्म देव ऐसे कौरवों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनके पक्ष में उनको लड़ना पड़ा, वचनबद्ध थे भीष्म। महाभारत युद्ध का प्रारंभ होता है मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी मोक्ष एकादशी तिथि को, मोक्षदा एकादशी तिथि, और भीष्म देव चुने गए प्रधान सेनापति के रूप में कौरव सेना का, और 10 दिनों तक उन्होंने लड़ाई करी भीष्मदेव। कौरव की सेना 11 अक्षौणी थी और 7 अक्षौणी सेना थी पांडव पक्ष की, और जो 18 दिन तक कुल मिलकर लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उनमें भीष्मदेव सेनापति पद पे 10 दिनों तक रहे थे। जब भीष्मदेव के देह का पतन होता है तो 5 दिनों तक सेनापति पद का संभाला द्रोणाचार्य ने, 10-15, 2 दिन संभाला कर्ण ने, 15-17, और 1 दिन संभाला शैल्य ने, 18 शैल्य। तो 10 दिनों तक सेनापति पद पे रहते रहते उन्होंने पांडवों की हत्या नहीं की थी, जबकि अर्जुन की कोई सामर्थ्य नहीं थी, अर्जुन जी की भीष्मदेव के सामना करना। जिस दिन भीष्मदेव ने पिता के लिए कहा ठीक है सत्यवती का विवाह हो जाए, और पिता प्रसन्न होकर भीष्मदेव को 2 वरदान दिए थे, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुमको युद्ध में कोई नहीं परास्त कर सकता है, और दूसरा वरदान है तुम जब चाहोगे तब शरीर का त्याग कर सकते हो, इच्छा मृत्यु का वरदान और युद्ध में अपराजय का वरदान। तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, और तुम इस संसार से ऐसे काल के वशीभूत होकर एक विवशता होकर विवश होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन रहेगी, ये 2 वरदान हम देते हैं। क्यों दिया? क्योंकि वो पिता भी तो ऐसे शक्तिशाली थे, जिसके मस्तक पर जिनके शरीर पर हस्त रखते थे वो भी मृत्यु से बच जाता था, जरा व्याधि से बच जाता था ये भीष्मदेव। इच्छा, हाँ एक बात है, इच्छा मृत्यु का वरदान अवश्य था लेकिन मृत्यु पर विजय नहीं थी, वो अलग बात है। भीष्मदेव महाभागवत वो अलग बात है, पर वरदान इस प्रकार से था। ये शब्द की तकनीक होती है, ऐसा नहीं कि भीष्मदेव नहीं मरेंगे, नहीं, इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा से जाएंगे। प्रभास वो थे, लंबे समय तक शराब लगी थी, इसलिए उनकी मौत बड़ी बड़ी दर्दनाक हुई थी। क्या इतिहास में आप कहीं बता सकते हैं ऐसी सया पर लेटे थे? कहीं कहीं और ये दृष्टांत नहीं है। 56 दिनों तक सरसैया में लेटे रहना, बाणों की शैया थी, तीखे तीखे बाणों की शैया, खून पीप झरता था, शरीर खून पीप से सना हुआ था। क्या किसी के शरीर में एक एक कांटा गड़ता है, दो दिन में शरीर सड़ना शुरू होता है, और 50, 55, 56 दिनों तक बाण गड़े रहना क्या दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी? शराप लगा था, लंबे समय तक तुमको रहना पड़ेगा। रहें, महाभागवत थे, और अंतिम समय पर उस शरशय्या पर लेटे हुए थे, श्री युधिष्ठिर महाराज जी के मन में शोक होता है, मैंने मेरी इंद्रिय तृप्ति के कारण, सामान्य राज्य लोभ के कारण मैंने प्रजाओं को निधन कर दिया है, मारा है, मेरे कारण ही 18 अक्षौणी प्रजा मारी गई थी, हाय हाय मैं कितना पापी हूं। श्री कृष्ण उनके समक्ष थे, फिर भी उनसे सांत्वना से प्रसन्न नहीं हो पाते थे, श्री कृष्ण जी सांत्वना नहीं दे पाते थे। युधिष्ठिर महाराज आयु में बड़े थे, बड़ी पीड़ा होती थी, इसलिए निश्चित किया गया कि चलें भीष्म देव जी जहां सरसज्जा पर पड़े हुए हैं। तब इस नवम अध्याय का प्रारंभ होता है। श्री सूत जी कहते हैं किस प्रकार भीष्म देव जहां पड़े थे वहां पर पांडवों को लेकर श्री कृष्ण आते हैं। सूत कहते हैं, इति भीत प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विवित्सया ततो विनसनम आगात यत्र दिवो व्रत अपतत। पड़े हुए थे मरण शैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण और पूरे परिवार वर्ग, जितनी स्त्रियां, जितने और भी माने जाने धौम्य, देवल, अश्वित, नारद और साक्षात सुखदेव पदार्थ हैं दर्शन के लिए। एक बार हमने कहा था, इसी से हमने तर्क दिया था, किसी ने कहा था सुखदेव गोस्वामी, शायद ये तर्क हमने दिया था, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के हैं, नहीं, ब्रह्मरात्रा दयो मलाह, श्री भीष्म जी जब वाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो सुखदेव जी उनके दर्शन करने आए थे, तब तक तो परीक्षित का जन्म नहीं हुआ था, और परीक्षित जी के जन्म होने के पश्चात 60 वर्ष होने के पश्चात ही परीक्षित जी को ब्रह्मशाप होता है, तो कम से कम तो सुखदेव गोस्वामी की आयु 60 वर्ष की होगी, बाकी गणित छोड़ दीजिएगा, कम से कम तो 60 होगी यदि परीक्षित के दिन ही जन्म ले, और ये तो दर्शन करने आ रहे हैं, 20-25 मिला लीजिए, तो सुखदेव गोस्वामी की आयु जब तक वो, जब वो भागवत कथा सुनाते थे तब तक 100 साल के आसपास, 100 साल से कम ज्यादा जो भी हो सकता है, पर बड़े पुरखा व्यक्ति थे, परंतु वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, साक्षात श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं स्कंद पुराण के अनुसार, इसलिए कहा गया तम द्वयस्त वर्षम सुकुमार पाद करोर बाहुवंश कपोल गात्रम। जैसे श्री कृष्ण की सुंदरता वैसी उनकी सुंदरता थी, अन्यथा ये बहुत बड़े पुरखे व्यक्ति थे। जरा दुश्मन न बाधते, भक्त हो गए तो जरा काहे को बाधित करेगी, बुढ़ापा बाधित नहीं करता। तो सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े ऐसे व्यक्तित्व थे। तो भीष्मदेव सरसज्जा पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण के साथ सभी ऋषि पहुंचते हैं, तो भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर आदि, और सारे धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, सबका उपदेश करते हैं, और चांद्रायण, सूर्यायन और उत्तरायण और दक्षिणायन, दक्षिणायन गति में देह त्याग करना योगियों के लिए उचित नहीं है। कई ऋषियों को ब्रह्मा जी ने भेजा था हंस के रूप में, तो हंसों ने आकर भीष्मदेव ने कहा, भीष्मदेव से कहा, आप महान योगी हो, आप इस दक्षिणायन में कैसे देह त्याग कर सकते हैं, आप उत्तरायण की प्रतीक्षा कीजिए। तो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध हुआ था दक्षिणायन में, मकर संक्रांति के पश्चात ही उत्तरायण गति होती है सूर्य की, तब तक भीष्म जी को
उस सरसजिया पर लेटे लेटे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी उस समय की। उत्तरायण गति आया, अथवा उत्तरायण शब्द का अर्थ होता है उत्तराह गर्भ अयनम, जैसे उत्तरायण उत्तरा का गर्भ जिसका निवास स्थल है वो उत्तरायण माने श्री कृष्ण। उत्तरा के गर्भ में केवल परीक्षित जी नहीं आए, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम भी है उत्तरायण, अयन माने निवास। अर्थात जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे तब तक ये शरीर मेरा शांत नहीं होगा। कितने बड़े योगी है, कितने बड़े भक्त है, अपना अधिकार को साध्यस्त करते हैं। हे प्रभु हे भगवान, जब तक हम शरीर को त्याग नहीं करेंगे तब तक आप मेरे सामने खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेबरम यावद इदम हिनम्यहम प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसत् मुखाम्बुज ध्यानपथ चतुर्भुज। हे चतुर्भुजधारी, आपके दर्शन ध्यान योग के आश्रय करके बड़े बड़े योगी किया करते हैं। ध्यान पथा चतुर्भुज, ध्यान में आपके चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन करते हैं ऋषि लोग। सदेवो देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे देव देवो, देवताओं के देव अर्थात ब्रह्मा शिव आदियों के भी नियम करता है, ये नियामक है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप प्रतीक्षा करें। कोई ऐसा भक्त है कह दें? इससे सिद्ध होता है कि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का जो वरदान था यहां से सिद्ध हो रहा है। जावद इदम जावद कलीवरम इदम हिनम्य हम, मेरी इच्छा से जब तक हम इस शरीर का त्याग नहीं करेंगे तब तक हे चतुर्भुजधारी विष्णु आप मेरे सम्मुख दंडायमान रहिए। टीकाकारों ने लिखा है कि इससे सिद्ध होता है भीष्म देव के उपास्य देव थे चतुर्भुज नारायण। चतुर्भुज नारायण 108 नाम में शायद भीष्म देव ने कहीं स्तुति करी है। हाँ, नारायण नाम रखे, भीष्मदेव नाम रखे, नमो नारायण ऐसा कुछ रखा है, चतुर्भुज नारायण 108 नाम में देख लेना। चतुर्भुजधारी नारायण मूर्ति श्री भीष्म जी की उपास्य मूर्ति है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा, मानो श्री कृष्ण कहेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ति ताम सथैव भजाम्यहम। तुमने घोर अन्याय किया है अर्जुन पर, तुमने वार किया है, तुमने द्रौपदी के वस्त्र हरण में प्रतिवाद नहीं किया है, मैं तुमको दंड दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, भीष्मदेव कहते हैं मैं अपराधी, मैं मानता हूं हम अपराधी, जन्म के नखसिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उबार। हे प्रभु, आप यदि हमारे अपराधों की गिनती करेंगे तो हम कहां जाएंगे। हम जानते हैं आप मेरे ऊपर कुपित हो, पर प्रभु जाते समय मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, यही अर्जी है मेरी, क्या है, आप प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर तक आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। किस रूप में खड़े हो जाऊं? बोले प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसा, आपके मुस्कान के साथ, प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसत, उस मंद मंद मुस्कान को लेकर के, शंख चक्र गदा कमल को लिए हुए आप मेरे सामने दंडायमान हो जाओ। कब तक? कली बरम इदम यावद हिनुम हम, जब तक हम इस शरीर का त्याग नहीं कर देंगे। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए भीष्मदेव के सम्मुख आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। भीष्मदेव स्तुति करते हैं, कई श्लोकों में स्तुति किया है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरा बरम बरम दधाने बपूर लका कुलावृतनान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनबद्या। हे विजय सखा,
हे अर्जुन के सखा, आपके चरणों में अनवद्य रति रहे। रति माने मेरा मन, मेरी मनरूपी गंगा सदैव आपके चरण कमल का स्पर्श करती रहे। भीष्मदेव निवेदन करते हैं तो श्री कृष्ण जाते हैं और अपने कर कमल से उनका शरीर स्पर्श करते हैं। श्री कृष्ण कर स्पर्श मात्र से उनके शरीर की समस्त पीड़ा शांत हो जाती है। भीष्मदेव शांत होते, कैसे मृत्यु देखिएगा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है दो मृत्यु है, भीष्मदेव की मृत्यु और हरिदास की मृत्यु, विलक्षण मृत्यु। ऐसे मृत्यु सबको नहीं होती है। भरतासुर ने कहा योगियों के मृत्यु विलक्षण है, और जो वीर समर भूमि में पीठ दिखाए बिना सामने सामने मरता है उसकी मृत्यु भी विलक्षण है। योगियों की मृत्यु, समर भूमि में सना की मृत्यु, ये सब विलक्षण है। तो भीष्मदेव आज उस मृत्यु की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण दंडायमान है। प्रार्थना समाप्त तो होती है, भीष्मदेव एक टकटकी लगाकर श्री कृष्ण जी के मुखारविंद पर अपने दर्शन को, अपने दृष्टि को निबद्ध करते हैं, स्थिर करते हैं। प्रसन्न हासा अरुण लोचन लसात पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, चतुर्भुज शंख कमल गदा चक्र और पीताम्बर धारी नील तमाल वर्ण, ऐसे दिव्य रूप की शोभा को देखते देखते भीष्म देव का अंतिम समय उपस्थित हो जाता है। सह अंत श्वास उपारमत, और उन्होंने श्वास छोड़ी नहीं, बस अपने अंदर उस श्री कृष्ण के दिव्य भाव को रखें, उस दिव्य मूर्ति को रखकर स अंत श्वास, उस श्वास को उसमें विलीन कर दिया। अपने चित्त आकाश को उस महाकाश में, अपने चित्त को उस जीव भाव को उस श्री कृष्ण में ही विलीन किया, अर्थात मां भागवत उन्होंने उस भाव को प्राप्त किया। चक्रवर्ती पाद आदि कहते हैं, मायावादी लोग, अद्वैत पंथ वाले लोग सोचते हैं कि भीष्म देव जी विलीन हो गए, नहीं, वो अपने पुनः स्वरूप को, महाभागवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से भीष्म देव का महाप्रयाण होता है। जीवन भर निष्ठा और जीवन भर त्याग, सत्य ज्ञान तपस्या, महाव्रत, ब्रह्मचर्य को कहते हैं महाव्रत, ऐसा व्रत। और श्री कृष्ण भी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महाव्रती श्री कृष्ण माने वे भी ब्रह्मचर्य धारी ही थे, इसीलिए भीष्म देव के सामने है। जैसे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है, इसीलिए उनके लिए विशेषण आया अवरुद्ध शौरतः, 16,108 गोपियों के साथ रात विहार करते समय भी उनके एक बिंदु का पतन नहीं हुआ, उनका शौर्य का, उनका तेज का ख्यालन नहीं हुआ, इसीलिए कहा गया अवरुद्ध शौरतः। उनका शौरत, उनका तेज, उनका वीर्य ख्यालन नहीं हुआ। जैसे श्री कृष्ण ऐसे भीष्म सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। इस प्रकार से भीष्मदेव अंतिम श्वास को अपने अंदर समा लेते हैं और श्री कृष्ण को देखते देखते अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करते हैं। हम भारतवासी इसीलिए महान है, हमारा इतिहास इस गौरव को पुनर्जीवित करता है। हम कितने भाग्यशाली, ऐसे ऐसे मानव विश्व इतिहास में नहीं है। हो सकता है कि पाश्चात्य जगत के लोग हमला कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, पर त्याग की भूमिका में इतने बड़े पद पर जाना यह बहुत बिरला, भारत के अलावा प्राय कहीं नहीं देखा जाता। हिटलर का नाम ले लो, नेपोलियन का नाम ले लो, अत्याचार की कोटि में इनका नाम आएगा, पर पिता के सुख सुविधा के लिए, देश की सुख सुविधा के लिए, जन सामान्य के सुख सुविधा के लिए अपने सुख को तिल तिल करके हवन कर दे, ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत दुष्कर है। और हम लोग उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, उसी भारत के संतान है, उसी परंपरा के हैं। भागवत हमारा ग्रंथ है, ये कथा हमको भगवत याद के, देखो देखो तुम्हारी धरोहर, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे पूर्वज कैसे हैं, ये भीष्म देव की गाथा है, ये कथा है। इससे हमको प्रेरणा मिलती है, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना धैर्य, 56 दिनों तक रहना, स अंत श्वास उपारमत। भीष्म देव अपने अंतिम दशा को प्राप्त होते हैं और प्रचंड धैर्य को यहां दर्शाते हैं, संसार को कितना धैर्य है, और संसार में दिखलाते हैं भक्त होने के नाते किस तरह से ईश्वर के श्रीहरि के साथ उनका व्यवहार होता है। आप प्रतीक्षा करो, और श्री कृष्ण प्रतीक्षा करने लगे। अंत में महाभागवत भीष्म का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। महाभारत के भीष्म पर्व में उनकी कथा है, सभा पर्व में भी कथा है, और भी कई एक जगह में बड़ी लंबी लंबी कथाएं, कैसे युद्ध हुआ, कैसे ना हुआ। भीष्म देव को परास्त करना कोई सामान्य बात तो थी नहीं, हमने उस कथा को नहीं कहा क्योंकि सब लोग जानते हैं, शिखंडी आया, अर्जुन ने मारा, सब जानते हैं। हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? आज मैंने जल्दी छोड़ दिया, कल उपवास था तो लोग प्रसाद पा के चले जाएंगे ना, तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी, मैं वो दायित्व लेता हूँ। हाँ जी, इसीलिए तो उनको दंड विधान हुआ, भीष्म सरसज्जा पर लेटे, ऐसा किसी एक जगह में लिखा हुआ है। किसी ने पूछा कि भीष्म देव महामानव है और भागवतों की कोटि में उनका नाम आते हैं, उनको सरसज्जा पर क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ा? ना, क्योंकि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो उन्होंने उचित बात नहीं कही। यदि भीष्म देव आवाज उठाते तो शायद किसकी हिम्मत नहीं पड़ती, पर चुप रहे। एक शिक्षा है, मान लीजिए मंदिर में कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम लोग को विनम्रता से उस अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है। इससे क्या होता है, हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, बाकी विचार ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ भाई, ये अच्छी बात नहीं है, अथवा हमारा ये सजेशन है, आप देख सकते हैं। तो भीष्म देव ने ऐसा नहीं कहा, हो सकता है और भी कहीं मजबूरी होगी, धृतराष्ट्र आदि या जो बैठे हुए हैं कहीं कुछ होगा, पर ये लिखा हुआ है, उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, दंड भोगना पड़ा। देखो, कई विचार ऐसे हैं, हम जिस सामान्य मस्तिष्क से उसको वो समाधान चाहते हैं, जैसे कोई रजगद्दी पर बैठा हुआ है तो उसके विचार अलग प्रकार के होते हैं। लवकुश ने पूछा, तुमने सीता का क्यों त्याग कर दिया, है ना, आप एक पति हो, पत्नी निर्दोष है, आपने त्याग क्यों किया? श्री राम ने कहा, व्यक्ति की नीति और राजनीति में अंतर है, मैं राजा हूं तो प्रजा की बात सुनना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं व्यक्ति होता, प्रथम सबसे पहले मैं राजा हूं, फिर उसके बाद मैं एक व्यक्ति हूं, मानव हूं, तो मेरा राजपद से व्यक्तिगत पद ये निकृष्ट है, तो सबसे पहले मैं राजा के नाते विचार करूंगा, फिर व्यक्तिगत स्वार्थ को देखूंगा। इसी प्रकार से कई राजनीतिक नियम कानून अलग होते हैं, हम उसको इस तरह से विचार नहीं कर सकते, तभी तो उनको महामानव कुटी में रखा गया है ना। फिर भी सामान्य नियम यही है, यदि हम कहीं देखते हैं अपराध है, कहीं अंधा कानून है, तो थोड़ा बहुत कुछ आपत्ति उठा भी सकते हैं, अथवा यदि हमारे बस की हो तो हम उसका संपूर्ण प्रतिवाद भी कर सकते हैं, ये उचित तो यही है, अन्यथा दंड का भागीदार होना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरिहरि बोल।